सोने को निकाल ले और नाम रूप को मात्र बचा दे मूर्तियों के। और सोने को निकालने के लिए आपने क्या किया कि सारी मूर्तियों को उठा करके फिर कढ़ाई में रख दिया और गर्म कर दिया, गल गया तो सोना ही रहा। तो जैसे वो सोन और जिस समय ये मूर्तियां हैं उस समय हम केवल उन सोने के मूर्त आकार में ही अपनी दृष्टि को बनाए रखते हैं। शिव की मूर्ति है, अम्बा जी की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है, तो जिसकी मूर्ति मात्र में दृष्टि है वह तो जिस देवता का भक्त है उस देवता की मूर्ति को देखते ही उसके अंतकरण में श्रद्धा का भाव आएगा और उस देवता का विरोधी राम का भक्त है कोई, राम की मूर्ति को देखा तो श्रद्धा का भाव आया और वो मूर्तिकार है उसे तो मूर्तियां बना बना करके अपना व्यापार करना है, उसने रावण की भी बनाई है, लेकिन राम भक्त रावण की मूर्ति को देखेगा तो अश्रद्धा करेगा। तो श्रद्धा और अश्रद्धा का भाव कब आता है, जब हम उस सोने को राम रावण के रूप में, कृष्ण कंस के रूप में देखते हैं और सुनार को यदि राम का भक्त राम की मूर्ति खरीदने के लिए आएगा तो एक किलो सोना दिख रहा है वो, तो एक किलो सोना और अपनी जो मेहनत होगी उस मेहनत का पैसा और सोने का पैसा ले लेगा, कहेगा कि इतने रुपया का है। और वही रावण की मूर्ति कोई खरीदने के लिए आया तो उसे भी उसमें रावण नहीं दिख रहा है, सोना और अपनी मेहनत दिख रही है, उतनी मेहनत उसको लगी है जितनी राम की मूर्ति बनाने में लगी है, उतनी ही कीमत रावण की भी लेगा क्योंकि उसके दृष्टि में तो इतने वजन का सोना मात्र है। तो दोनों को सोना देख रहा है, उसके दृष्टि में राम और रावण नहीं है, राम रावण की मूर्ति हम देख रहे हैं और श्रद्धा अश्रद्धा का भाव कर रहे हैं और मूर्तिकार केवल सोना देख करके उसका अंतकरण निर्विकार है, न श्रद्धा रूप विकार है उसके अंतकरण में, न अश्रद्धा रूप विकार है, निर्विकार अंतकरण है। सोने दृष्टि से उसने सारी मूर्तियों को आच्छादित किया, जितनी मूर्तियां उसके लिए एक एक किलो सोना है। ऐसे ही कहते हैं कि यहां पर ईश्वर के रूप से आच्छादित करने का अर्थ है कि ये सारा जगत, जैसे वो मूर्तियां सोने से ही बनी है, सोने में ही टिकी है और सोने में ही लीन होती है, इसलिए सोना ही है। और मूर्तियों को गलाए बिना भी आप विवेक से जब केवल सोना देखते हैं तो उस समय वो मूर्तियों का अलग अलग आकार गृहीतने होता है, एक समय अंतकरण में एक ही वृत्ति बना करती है। अनेक मूर्तियों को देख करके जब उनका कारण भूत स्वर्ण तत्व है उस आकार की आपकी वृत्ति बनेगी तो मूर्तियों के आकार की उस समय नहीं रहेगी। और आपके अंतकरण में जिस आकार की वृत्ति बनी है आपका अंतकरण उसी को गृहित करेगा, बाकी को गृहित नहीं करेगा, तो माना जाएगा बाकी को तो ढक दिया। सोना के रूप में जब आप गृहित करेंगे सारी मूर्तियों को तो सारी मूर्तियों का नाम रूप ढक जाएगा, का मतलब ढकने का अर्थ है जो ढकी है वो गृहित नहीं होगी। तो ऐसे हम सारे जगत को जो वेद हमको दृष्टि दे रहा है कि यह जगत परमेश्वर से ही बना है, ये तो वायमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, ये सारा जगत जिससे उत्पन्न हुआ है, जिसमें स्थित है, जिसमें लीन होता है वह ब्रह्म है। सोने से बनी हुई मूर्ति सोने में स्थित रही, सोने में लीन हुई तो सोना ही है, जैसे ऐसे ब्रह्म से बना ये सारा जगत संसार ब्रह्म में ही स्थित है और अंत में ब्रह्म में ही लीन होता है, तो ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तो वो मूर्तिकार जैसे सारी मूर्तियों को सोना के रूप में देख करके अब उसके वास्तविक स्वरूप पे आच्छादित करता है। ऐसे ये मंत्र बता रहा है कि हम हमारे राग द्वेष का विषय बनने वाला जो जगत है उसे उसके वास्तविक स्वरूप के रूप से गृहित कर लें, जो उसका स्वरूप है वास्तविक, तो हमारे अंदर ये राग द्वेष नहीं रहेगा। और ये जो ईश रूप से गृहित करना ये है वास्तविक दृष्टि। जैसे सारी मूर्तियों को सोने के रूप से देखना ये तत्व दृष्टि है, ऐसे तत्व दृष्टि जो तत्व है ये सारे जगत का परमात्मा, तत्व कहते हैं वास्तविक रूप को, कार्य का वास्तविक रूप हुआ करता है उसका कारण, सारे जगत का कारण है परमात्मा, तो परमात्मा है तत्व जगत का। और इस तत्व दृष्टि से जगत को आच्छादित कर लो, यानी तत्व के रूप में देख लो। जब हम कार्य के रूप में देखते हैं तो कार्य ही गृहित होता है, तत्व छिप जाता है। और तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो ये सारा जगत तत्व दृष्टि से गृहित होने के बाद, परमात्मा दृष्टि से गृहित होने पर आपको फिर क्या होगा, सारा जगत परमात्मा रूप से गृहित कर रहा है तो आप उस परमात्मा से अलग नहीं है। क्योंकि सारे वेदांत का सार कहते हुए यही कहते हैं ना भाष्कर भगवान कि श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यद उक्तम ग्रंथ कोटि भी। श्लोका जो अनेकों ग्रंथों से कहा है उसे हम आधे श्लोक से कहेंगे। वो क्या कहा है अनेकों ग्रंथों ने, तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। सारी उपनिषदे लो, ब्रह्म सूत्र लो, गीता लो, और इनके व्याख्यान रूप बहुत ग्रंथ हैं, इनको आधार बना करके बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, नाम गिनना भी कठिन है, असंख्य ग्रंथ हैं। उन सारे ग्रंथों में मात्र यही कहा है कि ब्रह्म सत्य है, यानी तत्व है, और ब्रह्म का कार्य जो ये जगत है वह मिथ्या है। वाचारम्भनम विकार, विकार कहते हैं कार्य को, वाचारम्भन कहते हैं मिथ्या को। तो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ठीक है, इन दोनों की स्थिति तो होगी, लेकिन हम कौन है, हम यानी जीव। तो कहते हैं जीवो, तो जीव को जगत कोटि में लिया जाए या ब्रह्म कोटि में लिया जाए, जगत कोटि में आएगा तो मिथ्या हो जाएगा। तो कहते हैं जीव के दो अंश हैं, जो उपाधि अंश है वो तो जगत कोटि में है, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि जगत है, प्रकृति और प्राकृत यानी प्रकृति का परिणाम ये पांचों भूत, तो पांचों भूतों से ही आपका अपंचकृत पंचभूतों से बना है सूक्ष्म शरीर, और स्थूल भूतों से बना है स्थूल शरीर, इसलिए जगत कोटि में जाएगा। और अज्ञान ये मूल प्रकृति है तो वो भी जगत कोटि में जाएगा। तो ये जो तीनों शरीर है उपाधि अंश ये तो जगत कोटि में है, वो मिथ्या है। और इसके बिना जो आपका स्वरूप है वो ब्रह्मैव, जीवो ब्रह्मैव, तो जीव का उपाधि से रहित जो स्वरूप है वो ब्रह्म रूप ही है, न अपरह, भिन्न नहीं। तो जिस तत्व के दृष्टि में ये सारे जगत को देखने के लिए कहा जा रहा है वह तत्व ही, क्योंकि आप दृष्टा है, देखने वाले हैं, और गीता में स्पष्ट भाषा में कहा है भगवान ने कि क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, वहां गीता का माम, यहां का ईशावास्यम में ईश शब्द का अर्थ है। तो ईश्वर रूप से आच्छादित करना है का मतलब है कि परमात्मा रूप से आच्छादित करना, और परमात्मा से भगवान क्षेत्रज्ञ को यानी जीव को अलग नहीं बता रहा है। तो क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ मैं हूं, सारे क्षेत्र का दृष्टा क्षेत्रज्ञ एक है परमात्मा, और वही आप विचार से देखेंगे तो आपका स्वरूप निर्धारित होगा, आपके अपने वास्तविक स्वरूप से ही सारे जगत को ग्रहित करने के लिए यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि सारा जगत आत्मा में ही कल्पित है, रस्सी में कल्पित सर्प के तरह। और जो कल्पित होता है उसका वास्तविक स्वरूप उसका अधिष्ठान हुआ करता है। आप केवल आपके वास्तविक स्वरूप में कल्पित जो एक शरीर है तद्रूप मात्र नहीं है, अपितु सारे जगत के अधिष्ठान है। उस जगत के अधिष्ठान के रूप से आच्छादित कर ले सारे जगत को, का मतलब अधिष्ठान के रूप से ही गृहित कर ले तो सारी समस्या का समाधान हो जाता है। इसी ईश्वर रूपता का वर्णन आपको ईशावास्योपनिषद का, जिस रूप से आपको ढकना है सारे जगत को यानी गृहित करना है, उसी का वर्णन है चौथे मंत्र से लेकर के आठवें मंत्र तक। ये कहा कि अनेजदेकम मनसो जय्यो नैनद देवा अपनवन पूर्वमर्षत तद धावत्वन्यान अत्येति तिष्ठत तस्मिन अपोमा तरिस्वादधाती। अनेजदेकम इससे बताया कि वो निर्विकार है, जिस तत्व से आपको इस सारे जगत को ढकना है वह तत्व कैसा है तो अनेजत है, का मतलब उसमें कोई कंपन नहीं है। एजत कहते हैं कंपायमान वस्तु को, ईश्वर कंपायमान नहीं है, उसमें कंपन नहीं है। कंपन का अर्थ है चलन, चलन का अर्थ है क्रिया, विकार, तो निर्विकार है, उसमें चलन रूप क्रिया नहीं है, चलता फिरता नहीं है। क्यों नहीं चलता फिरता? इसलिए कि आकाश चलता फिरता है कि नहीं? नहीं चलता फिरता है। क्यों? चलना फिरना तो उसको होता है जो एक स्थान पर है दूसरे स्थान पर नहीं है। आकाश तो सर्वत्र होने से आकाश को न कहीं से निकलना है न कहीं जाना है, और आकाश से भी व्यापक है, इसलिए वो अनेजत है। और कितना है, कितने हैं ईश्वर? तो कहते एकम, वो बहुत नहीं है, एक ही है, अनेजदेकम। और मनसो जैवियो, तो कहते वो मन से भी अधिक वेगवान है। क्यों? मन से भी अधिक वेगवान उसको कह रहे, यद्यपि अनेजत कहा है, कहते इसलिए मन से, मनसो जैवियो इससे बताया जा रहा है कि एक प्रकार से वो व्यापक है, कि मन गतिमान वस्तुओं में सबसे गतिमान है। मन उसे कितनी भी लंबी दूरी हो वहां पहुंचने में क्षण का बहुत छोटा अल्प सा हिस्सा लगता है पहुंचने में। मन के पहुंचने का अर्थ होता है कि मन ने संकल्प किया तो मन वहां पहुंच ही गया, जिस वस्तु का संकल्प हुआ उस वस्तु में। मुंबई में रहते रहते आपको ब्रह्मलोक का संकल्प हो जाए तो ब्रह्मलोक में आप पहुंच गए, शरीर यहां है, मन ब्रह्मलोक में पहुंच गया। जो बहुत अधिक गति से जाने वाले यान है उसको भी पहुंचने के लिए कुछ समय लगता है, जो अंतरिक्ष स्टेशन बना है वहां पर, और उससे तो बहुत लंबा है, दूर है ब्रह्मलोक, लेकिन ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए एक क्षण भी नहीं लगा मन को। और वो ब्रह्मलोक में पहुंचा, ये आपने जाना, ब्रह्मलोक विषयक संकल्प हुआ ना, तो ब्रह्मलोक में पहुंचा। और वो पहुंचा तो उसको आपने जाना कि नहीं, का मतलब ब्रह्म, अभी इस समय हमारा मन ब्रह्मलोक का संकल्प कर रहा है तो ब्रह्मलोक में है, ऐसा आप अपने मन का संकल्प जान लेते हैं कि इस समय ये ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ है, का मतलब किस समय वो पहुंचा वो आप देख रहे हैं, तो देखने वाले आप वहां उसके पहले पहुंचे हैं, तब तो आप देख पाएंगे कि इस समय पहुंचा और कब निकला ये भी आप जानते हैं। इस मुंबई से मन ब्रह्मलोक जाने के लिए कब निकला इसको भी आप जान रहे हैं, का मतलब वो जहां से निकला उस समय आप वहां विद्यमान हैं, तभी तो जान पाएंगे। और जहां पहुंचा वो भी जान रहे हैं कि यहां पहुंचा है और इतने समय में पहुंचा है, का मतलब आप उससे उसके पहुंचने से पहले पहुंचे हैं वहां पर, तब तो निर्धारण कर पाएंगे कि इतने बजे आया यहां। का मतलब यह है कि मन की गति शुरू होने से पहले मन जहां था वहां पर आप थे, उसकी गति को देखा इतने बजे इसने प्रवास शुरू कर दिया और इतने बजे पहुंचा उसके गंतव्य स्थान पर, ये जानने के लिए भी आप उपस्थित हैं। तो मतलब मन के बाद में आपने प्रवास शुरू किया और मन के पहले ही वहां पर पहुंच गए हैं, तब तो जान रहे हैं कि यहां पर मन इतने बजे आया। इसका अर्थ है कि मन से भी ज्यादा आपकी गति है, मन से ज्यादा गति है का मतलब यही है कि आप यद्यपि कहीं आए गए नहीं, आप व्यापक हैं, जहां से मन ने प्रवास शुरू किया वहां भी है और जहां वो पहुंचता है विश्व में वहां पर भी है। तो मनसो जीवियों से इतना मात्र बताया जा रहा है कि ये जो आत्मा है अनेजत है यानी निर्विकार है, एक है और व्यापक है और उसे आप देखना चाहोगे तो आंख से दिखने वाला नहीं है, पांच इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय से वो ग्राह्य नहीं है। इसलिए कहा नैन देवा अपनुवन, ये जो देवता है यानी देव शब्द का अर्थ है इंद्रिया, इसे प्राप्त नहीं कर सकती। इंद्रियों से प्राप्त होने का अर्थ है इंद्रिय से जानना, इंद्रिय से जो वस्तु जानी जाती है वह या तो शब्दादि रूप होती है या उनका आश्रय होती है। आप चक्षु इंद्रिय से या तो रूप को जान सकते या रूपवान वस्तु को जान सकते हैं, आत्मा न तो रूप है न तो रूपवान है। श्रोत्र इंद्रिय से शब्द को जानते हैं, आत्मा शब्द से भी अतीत है। त्वग इंद्रिय से या तो स्पर्श को या स्पर्शवान वस्तु को जानते हैं, आत्मा में कोई स्पर्श भी नहीं है इसलिए वो स्पर्श से भी और स्पर्शवान से भी रहित है, अलग है। और गंध को जानते हैं, घ्राण से आत्मा गंधरूप नहीं, गंधरूप भी नहीं है। रस को जानते हैं रसन इंद्रिय से, वो रस रूप भी नहीं है यद्यपि तैतरीय उपनिषद उसे रस स्वरूप कह रही है रसो वै सह करके, लेकिन वो रस ऐसा रस नहीं है खट्टा मीठा कड़वा तिक्त, ये जो छह रस बताए हैं मधुरादि वो रस वहां पर रसो वै सह शब्द का अर्थ नहीं है, वहां रस का अर्थ है आनंद, वो आनंद स्वरूप है। तो आनंद को आप रसन इंद्रिय से नहीं जान सकते, तो यही तो सारी इंद्रियां हैं, तो इन इंद्रियों से वो अग्राह्य है। नैन देवा अपनुन पूर्वमर्षद से बताया कि उस निर्विकार एक व्यापक आत्मा को जानने का साधन इंद्रिया नहीं है, अतिंद्रिय है। ऐसे आत्मा को शरीर त्रय से अलग भी आठवें मंत्र में बताया है कि वो सपर्यगा शुक्रमकाय मवरणम इत्यादि से बता, अकाय यानी स्थूल सूक्ष्म शरीर से रहित है, अवरण है अष्णावीर है का मतलब स्थूल शरीर से रहित है, शुद्ध है का मतलब अविद्या रूपी जो कारण शरीर है उससे भी रहित है, वो चेतन है उसे किसी से जाना नहीं जाता, उससे सबको जानता है, वो सबको जानने वाला है उसे किससे जानेंगे। ये बृहदारण्यक उपनिषद आपको प्रश्न करते हैं कि विज्ञातारम अरे केन विजानियात, बताइए कि सबको जानने वाले को आप किससे जानोगे, सबको जानने वाली जो आत्मा है उससे किससे जाना जाएगा, वो किसी से यदि जाना जाएगा तो फिर अपने से भिन्न दूसरा कोई आत्मा को जानने वाला होगा तो ये जो आत्मा है दृश्य हो जाएगा घटादि के तरह ही, तो अनात्मा बनेगा। आत्मा को किसी से जाना नहीं जाता, वह स्वयं प्रकाश है। दिन में आप सूर्य के प्रकाश से सबको देखते हैं, सूर्य को किससे देखते हैं? सूर्य तो प्रकाश स्वरूप होने से उसे जानने के लिए किसी प्रकाशांतर की जरूरत नहीं है। ऐसे चेतन आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसलिए कहते हैं कि सपरिगा शुक्रम का मतलब वो स्वयं प्रकाश है, उसे जानने के लिए अन्य किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। इसलिए इंद्रिया भी नहीं जान पाते, और ऐसे आत्मा की अनुभूति जिसको होती है आत्मरूप से, उसका ये जो भ्रम है, ये जो अनादिकाल की भूल है कि आत्मा शरीर ही मैं हूं, ये भूल सुधरती है। इस भूल को सुधारने का उपाय है कि उपनिषदें आत्मा का जैसा स्वरूप बता रही है वैसा ही स्वयं को अनुभव करना, तो उससे दुखों का हेतुभूत जो भ्रम है भूल है वो निवृत्त होती है। फिर बुद्धि में किसी प्रकार का अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विकार नहीं होता, निर्विकार भाव में बुद्धि रहती है ज्ञानी की। और मनुष्य जीवन कृतार्थ हो जाता है, भगवान की भाषा में एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इसी स्वरूप को जानने वाला मनुष्य में सबसे बुद्धिमान मनुष्य माना गया, और उसका कोई कर्तव्य नहीं हुआ, कृतार्थ माना गया है। ऐसे मनुष्य जीवन को कृतार्थ करने वाला ज्ञान मनुष्य का परम हितैषी जो वेद है उसी से होता है। उस आत्मस्वरूप का ज्ञान कराने का सामर्थ्य मात्र वेदांत ग्रंथों में है, इसी के लिए वेदांत है। प्रत्येक प्रमाण अलग अलग वस्तुओं का ज्ञान कराने के लिए सभी के सभी प्रमाण नहीं है, सब प्रमाणों का अपना अपना क्षेत्र बटा हुआ है। मनुष्य जीवन को कृतार्थ कराने वाला ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो वह उपनिषदों से प्राप्त होता है, वेदांत से प्राप्त होता है। वेदांत चिंतन इस प्रकार का मनुष्य जीवन को कृतार्थ कराने वाला ज्ञान प्राप्त कराने की योग्यता आप में आ जाए वेदांत चिंतन से, यही समस्त जगत के संचालक परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस सत्र का विराम यहीं पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।
हरि ओम। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। जो 13 दिन गुजरे इतनी अच्छी तरह से आत्मा से की बातें हुई, पूज्य महाराज जी जो जेबी नगर व साधना सदन के अध्यक्ष स्थान पे हैं, त्यागमूर्ति जी गणेशानंद जी जो यहां भी अध्यक्ष थे और वहां थे, जेबी नगर व साधना सदन में, और उनके निर्वाण के बाद पूज्य महाराज जी जेबी नगर व साधना सदन के अध्यक्ष के रूप में हैं। यह भी खुशी की बात है कि हमारे प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टी के रूप में भी आप हैं, और आपके आशीर्वाद और हमेशा मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। और यह साल तो एक विशेष रूप से हमारे सामने है कि जबकि बस अभी घंटों की देरी है और शायद इस समय में हम नाचते गाते आ रहे होंगे लक्ष्मीनारायण मंदिर से, तो एक संकल्प की बात हो रही थी, एक दृष्टि और दृश्य की बात हो रही थी और दृष्टा की बात हो रही थी। तो कल से यह संकल्प करें कि यह प्रेमपुरी भवन जो बहुत अच्छी तरह से, अगर आप शायद आज रात से यहां गुजरे तो बड़ी चमकाहट बाहर से महसूस होगी, गर्व होगा कि अपने प्रेमपुरी जी महाराज ने इतना जबरदस्त संकल्प किया होगा, क्योंकि पुण्यात्मा का संकल्प ही रंग लाता है। और प्रेमपुरी जी महाराज का ये पुण्य संकल्प था, जो प्रेमपुरी जी महाराज की कल आधी बात हमने रखी थी कि उनको जो यह चिंता थी कि बंधन जो है उसमें से मुक्त कैसे हो, वह उसको स्पष्टता नहीं हो रही थी। प्रकाशानंद गुरुजी महाराज के शिष्य रहने के बावजूद कि जिन्होंने विवेकानंद जी और रामतीर्थ जी को शिष्य बनाया था, मगर फिर भी यह चटपटाहट थी कि इसमें बंधन में से मैं मुक्त क्यों हो, कैसे हो, कोई मार्ग न मिला। तो उन्होंने सोचा कि मैं गंगा स्नान में अपना यह शरीर मिटा दूं, और बस कुछ घड़ियों की बात थी, कुछ ही समय का क्षण बात की थी, और एक काश्यवर्ण वृद्धात्मा वृद्ध माता ने दर्शन दिए और उन्हें बताया कि बेटा क्या कर रहा है। तो महाराज जी ने बताया कि ये मुझे चटपटाहट हो रही है, इतनी मैंने ज्ञान प्राप्त किया, इतना किया, मगर जो महाराज जी आज जो ईशावासी उपनिषद को लेकर चल रहे थे, शायद यही सब बातें थी कि जो उनको सता रही थी। और उन्होंने बोला कि मुझे यह मेरी देह त्याग करना है, वो मैंने निश्चय किया। तो जो वृद्धा थी उन्होंने बताया कि बेटा ये बात ठीक है, मगर जैसे जैसे अगर तू यह देह त्याग करेगा तो जो तूने निश्चय किया है कि मुझे ये बंधन के मुक्ति का मार्ग कैसे हो, इससे तो तेरा और दृष्ट जो जब देह त्याग के बाद जो तेरी जो बंधन की जो सवाल है, जो प्रश्न है, और दृढ़ होंगे, तो इससे कोई तू मिटेगा नहीं, क्योंकि जन्म जन्मांतर तो वही तुझे और सताता रहेगा। तो उन्होंने माता ने बताया और उन्हें काफी ज्ञान भी दिया, और उन्हें बताया कि भाई मैं एकाध दो दिन में वापस आऊंगी, तब तक उसका चिंतन तू कर। और पूज्य महाराज जी ने आंखें खोली और देखा कि भाई यह जो वृद्ध माता थी वो तो एकदम अदृश्य हो गई है, मगर अंदर से एक प्रकाश हुआ और बाद में उन्होंने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। कैलाश पीठाधीश्वर के रूप में वह रहे और महाब्रह्मानंद आश्रम जो बनना था उसमें लक्ष्मीबाई से वो मिले, जो यहां बंबई उनको लेके आई, और यहां चातुर्मास के प्रवचन का यहां उनका कार्यक्रम चलता रहा। ईश्वर की कृपा रही कि हमारे हरकिशनदास जी अग्रवाल, तुलसी राम अग्रवाल से उनकी मुलाकात हुई और प्रेम कुटीर में उनका लेक्चर जो प्रवचन था वो नित नियम होता रहा। पूज्य पिता श्री हरिभाई और हरकिशन दास की यह जोड़ी ने बहुत ही प्यार से महाराज जी को सब बातें रखी और इस संकल्प को पूरा करने उनके देह त्याग के बाद यह जो प्रेमपुरी आश्रम में हम बैठे हैं उसका जो हम लोग पान रोजाना कर रहे हैं वह पूज्य प्रेमपुरी जी महाराज के संकल्प का ही जो दृश्य हम लोग देख रहे हैं। और ईश्वर करे यह संतों का सत्संग जो सुबह से शाम तक गुजरता रहता है वह उतनी जोर से अगले वर्ष निर्वाण महोत्सव में आप सबकी हाजिरी में होगा। वैसे ही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कई बातें मैंने लिखी है मगर समय की मर्यादा को देखते हुए, क्योंकि जो प्रेमपुर जी महाराज के दादाजी के संस्कार थे वह भी जबरदस्त थे, तो ये संस्कार ही रंग लाते हैं। तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं, मगर बीच बीच में कभी भी समय मिलेगा तो ये बातें होती रहेगी। अभी जो कार्यक्रम के बारे में कल जैसे बताया गया था कि बाकी सभी कार्यक्रम स्थगित होंगे और सिर्फ डॉक्टर का जो दवाखाना है वही खाली चालू रहेगा, और भागवत का कल से शुभारंभ होगा। जो 6:15 से सबसे पहले ऊपर चौथी मंजिल पे, इस समय तीसरी मंजिल पे खाली भागवत का कार्यक्रम ही रहेगा, और चौथी मंजिल पर ब्राह्मण वगैरह विराजेंगे, यजमान वगैरह जो भी पूजा पाठ है वह ऊपर चौथी मंजिल पे होगा। तो 6:15 से वह प्रारंभ होगा चौथी मंजिल पे, बाद में 7:30 से लक्ष्मीनारायण मंदिर से शोभा यात्रा होगी, उसके बाद ऊपर जलपान की व्यवस्था कर दी गई है, और 9:15 से 10:15 तक पूजा चलेगी वापस, और उसके बाद आप जल्द से जल्द अपना पास लेके या तीसरी मंजिल पे आपकी कुर्सी संभाल ले। और करीब करीब 11 के करीब पूज्य मुरारी बापू व सभी संत, जिसमें महाराज जी भी होंगे, मोहनानंदगिरी जी महाराज भी होंगे, माधवानंद जी भी होंगे, और कई संत यहाँ उपस्थित होंगे, और व्यासपीठ पर विराजमान विश्वेश्वरानंद जी महाराज भी यहाँ विराजेंगे। पूरा हॉल सजाया जा रहा है, पूरी बिल्डिंग सजाई जा रही है, बस है ऐसे सत्संगी आप रहेंगे तभी उनकी शोभा और बढ़ेगी। तो इसका जो कल से जो कार्यक्रम होगा उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। जो शुक्रवार का कार्यक्रम है उसमें एक महात्मा सायं 5 से 7:30 के दरमियान होगा, और शनिवार से 7:30 से 10 प्रातः व सायं 5 से 7:30 भागवत प्रवचन परम पूज्य विश्वेश्वरानंद जी महाराज द्वारा होगा। इसका पूरा लाभ ले जो दिनांक 7 तक चलेगा, और शनिवार 8 तारीख को संत प्रवचन 7:30 से 9:30, बाद में हवन व संत भंडारा होगा। महाराज जी का प्रातः प्रवचन व स्वाध्याय प्रवचन अगले वर्ष 1 से 15 नवंबर तक होगा, और जो स्वाध्याय प्रवचन है उसकी भी आज पूर्णा होती होगी। आज के श्रेय समिति के यजमान है श्रीमती मुक्ताबेन रमेकलाल भावसार की ओर से श्री रमेकलाल भावसार की स्मृति में, चिरंजीवी अमीशा की ओर से परम पूज्य डोंगरे जी महाराज की स्मृति में, श्री खुशाल भाई जे मेहता की ओर से आपके जन्मदिन के निमित्त पर। इसके बाद में जो शुक्रवार के कल की जो जो है श्रेय समिति उसकी भी अनाउंसमेंट कर रहा हूं, अगर आप है तो मेहरबानी करके आज ही वो ले ले, कल शायद किसे समय मिले ना मिले। कल शुक्रवार के जो श्रेय समिति के यजमान है वो श्री मनोज कुमार गौरी शंकर रंडात की ओर से, श्री सुंदरलाल तुलसीदास शाह की ओर से श्रीमती चंद्रिकाबेन की स्मृति में, श्रीमती सुभद्राबेन रमणलाल पारिक की ओर से श्रीमती मणिबेन त्रिकमलाल पारिक की स्मृति में, तथा श्री रमेश डी बजाज की ओर से आपके लग्न तिथि के निमित्त पर। आप या आपके परिवार के सदस्य उपस्थित हो तो महाराज जी से आशीर्वाद और प्रसाद ग्रहण करें। अब शांति पाठ होगा। कल अपने विमला ताई के हाथ से ही जो मुरारी बापू का कार्यक्रम शांति पाठ से शुरू होगा, मैंने उनको विनंती की है, उमा बहन और दोनों कल शांति पाठ से यह अपना कल का कार्यक्रम निर्वाण महोत्सव का शुभारंभ होगा। हरिओम, शांति पाठ।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।